लघु नाटिका कर्मों का साक्षात्कार, पात्र परिचय, सेठ रतनलाल, शहर का बड़ा सेठ छज्जू और रज्जू सेठ के परिचित, सेठ जी के दो बेटे, दो बहुए, एक पोता, एक नौकर माणिकलाल, एक ज्ञानी भाई धर्मराज, धर्मराज के दो सेवक चित्रगुप्त। सेठ रतनलाल जी अपने मकान के बरामदे में चिंता मगन स्थिति में टहल रहे हैं। माणिकलाल, सेठ जी राम राम, आइए ना, ठंडी हवा में सैर भी हो जाएगी, कुछ पुण्य का खाता भी जमा हो जाएगा, मेरे साथ आश्रम चलिए ना। भाई, बात तो आपकी सही है, पर कई दिनों से कोई धंधा सेट नहीं बैठ रहा है, घाटा ही घाटा चल रहा है, थोड़ा सेटिंग होने दो फिर चलूंगा। दूसरा दृश्य, बरामद में खड़े सेठ रतनलाल सुबह सुबह नौकर को कुछ हिदायतें दे रहे हैं। अरे सेठ जी, बधाई हो, आपकी बार तो आपका धंधा चल पड़ा, अब तो चिंता मिट गई, अब तो चलिए कुछ पार्लो की कमाई भी कर लीजिए। भाई, सब आप लोगों की और प्रभु की मेहरबानी है, धंधा चल तो पड़ा है पर थोड़ा जम जाने दो, फिर तो आप ही के साथ चलना है और करना क्या है। तीसरा दृश्य, सेठ रतनलाल अपनी नई कोठी के सामने बने बगीचे में कुर्सी पर बैठे बही खाते देख रहे हैं। सेठ जी, अब तो आपका धंधा जम गया, ऐसा जम गया कि कई पीढ़ियों का प्रबंध हो गया, अब तो आप भगवान के लिए कम से कम एक घंटा तो निकालिए। भाई, क्या बताओ, धंधा इतना बढ़ गया है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, पहले थोड़ा टहल लिया करता था, अब तो सुबह सुबह ही वही बही खाते में उलझना पड़ता है, धंधा है तो ये सब करना ही पड़ता है, इसे छोड़ कैसे इधर उधर जा सकता हूं। अजीब आदमी है, धंधा नहीं था तो भगवान के लिए फुर्सत नहीं, धंधा लग गया तो भी भगवान के लिए फुर्सत नहीं, और धंधा जम गया तो भी भगवान के लिए फुर्सत नहीं। चौथा दृश्य, कपड़े से ढका सेठ रतनलाल का शव उसकी कोठी के आंगन में पड़ा है, लोग अंतिम दर्शन की औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं, कोई कोई फूल अर्पित कर रहा है। छज्जू रज्जू के कान में, सेठ ने पिछले 5 साल में इतना कमाया कि अगले 10 पीढ़ियों का प्रबंध हो गया, पर था बड़ा कंजूस, कभी ईश्वर अर्थ एक आना भी नहीं निकाला। रज्जू छज्जू के कान में, नहीं लगाया तो साथ में तो लेकर नहीं गया, इसी धरती पर से इकट्ठा किया और इसी धरती पे छोड़ दिया, अब बच्चे जो करे, सेठ कौन सा टोकने आने वाला है। दृश्य 5, धर्मराज का दरबार। चित्रगुप्त, महाराज, मृत्यु लोक से आज एक सेठ आपके पुरी में आए हैं, कहो तो हाजिर करूं। अवश्य अवश्य। दो सेवक सेठ जी को सूक्ष्म काया में लेकर आते हैं। कहो सेठ, क्या कमा कर लाए। हम हर एक आत्मा से ये आशा करते हैं कि वो साकार दुनिया के रंगमंच पर जाए तो पुण्य की कमाई से हाथ भरतू करके लौटे, कहो क्या कमाई करके लाए। महाराज, 2 कोठियां, 10 करोड़ नगद बैंक में, 40 किलो चांदी, 5 किलो सोना, 10-10 लाख के 5 प्लॉट, 2 फैक्ट्रियां, बस यही सब कमाया। सेठ जी, वो तो सब नीचे रह गया, आपके साथ क्या आया, इस समय आपके मुट्ठी में क्या है। सेठ जी हाथ मलता है, इधर उधर झांकता है। महाराज, मैं तो सब बच्चों के लिए छोड़ आया, क्या उसका कोई पुण्य नहीं है। चित्रगुप्त बीच में, महाराज ये देखिए सेठ जी का कर्म खाता, देसी घी में मिलावट, राशन में मिलावट, नकली माल के असली दाम, कमतोल और कर चोरी। सेठ जी, ये सब आपने किए, अपने हाथों किए। महाराज, किए तो मैंने, पर इनका लाभ तो मैंने नहीं लिया, मैंने तो सारा जीवन सीधी सारी धोती कुर्ता पहना है, खाना भी कभी खाया कभी नहीं खाया, नींद भी कभी की कभी नहीं की, और मैंने तो 12 और 14 घंटे की दुकान की ड्यूटी बजाई, पर जो कमाया वो अपने पर तो नहीं लगाया। सेठ जी, जिसके हाथों कर्म होते हैं, जिम्मेवार तो उसी को माना जाएगा, फल भी वही पाएगा। सेठ जी, फल तो आपको मिलेगा ही, दूसरी बात, ऐसे कर्मों से प्राप्त लाभ भी कोई भले में थोड़ी लगता है। चोरी का धन मोरी में ही तो जाता है। विश्वास ना हो तो नीचे झांककर देख लीजिए। दृश्य 6, सेठ जी की कोठी के अंदर का दृश्य। बड़ी बहू बड़े कमरे का ताला लगा रही है, छोटी बहू चाबी छीनने की कोशिश कर रही है। बड़े लड़के के हाथ में कुछ कागजात है जिन्हें लेने के लिए छोटा लड़का लपक रहा है। इसी छीना छपटी में एक कागज फटकर नाली में गिरा है। वो किसी प्लॉट की रजिस्ट्री का कागज है। प्लॉट की कीमत 10 लाख है। कागज के फटने से इसकी मिल्कियत खतरे में पड़ गई है, पर अब भी दोनों का झगड़ा और तू-तू में जारी है। बड़ा पोता अभी शराब के नशे में झूमता हुआ अंदर घुसा है, पर उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है।
हाय, इस प्लॉट को लेने में मैंने महीने भर का चैन, भोजन और नींद पूरी गवा दी थी, इसका ये हश्र।
सेठ जी, आपकी मुट्ठी पुण्य से तो खाली है, पर पाप से कमाए धन के पाप का भार आप पर ही है, और पाप का जो धन आप नीचे छोड़ाए हैं, उनके कारण आपके पुत्र जो कुकर्म करेंगे उसके पाप का कुछ हिस्सा भी ब्याज के रूप में आपको मिलता रहेगा, क्योंकि ना आप पाप कमाई करते और ना वो उसे कमाई को पाप में लगाते।
महाराज, एक बार मुझे नीचे जाने की इजाजत दे दो, मैं कुछ तो दान पुण्य में लगाऊं।
सेठ जी, शरीर तो आपका जल चुका है, पर काया प्रवेश करेंगे तो लोग आपको भूत समझेंगे, ऐसे तो आपके पुत्र पौत्र भी आपसे डरेंगे ही। अब नीचे जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई पुण्य आपके खाते में नहीं है। अतः धन विहीन, शिक्षा और संस्कार विहीन परिवार में आपको जन्म दिया जा रहा है।
महाराज, ये तो सरासर अन्याय है, कहां मैं सेठ और कहां ऐसा परिवार, कोई बराबरी नहीं।
सेठ जी, किसी के घर में कितना भी अनाज हो, पर जब तक वो उसे बोए नहीं, वो अनाज बढ़ता नहीं। इसी प्रकार धन चाहे कितना भी क्यों ना हो, जब तक उसे भी श्रेष्ठ कार्यों के रूप में बोते नहीं, फल निकलता ही नहीं। पिछले जन्म का बोया बीज ही तो अगले जन्म में फल बनकर मिलता है। देखो तो ये दृश्य, माणिकलाल सेठ जी को आश्रम जाने का निमंत्रण दे रहा है और सेठ जी हर बार बहाना बना रहे हैं। वो दृश्य इमर्ज होता है तथा सेठ के चोरी, मिलावट, झूठ, धोखाधड़ी करते हुए कई दृश्य इमर्ज होते हैं। सेठ जी, इस माणिकलाल बच्चे ने तुमको एक बार नहीं, 3-3 बार जागृत किया, फिर भी तुम नहीं चेते। नश्वर धन के लिए तो रात रात जागे, पर सच्ची कमाई, साथ जाने वाले कमाई के लिए 1 घंटा भी महंगा पड़ा, तो अब हो क्या सकता है। सेठ दृश्य देखकर रोता है, चिल्लाता है, अफसोस करता है, बार बार माफी मांगता है। अब माफी का समय नहीं है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए, पूरी की जाएगी। महाराज, मेरी तरफ से इतना ही संदेश धरती पर भिजवा दो, मैं करोड़पति सेठ नश्वर धन के लालच और संग्रह में इतना भरमाया कि मैंने आगे के बारे में कुछ नहीं सोचा, ना समय, ना धन, ना तन, ना मन ईश्वर अर्थ लगाया। उसके फलस्वरूप आज मैं सब कुछ गंवा कर अभावग्रस्त परिवार में जन्म लेने जा रहा हूँ। मेरे बंधु, मुझसे शिक्षा ले और मेरी जैसी गलती ना करें। धन्यवाद।